Radha Madhav Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Radhe Jaya Jaya Jagannath Jagannath Balade Subhadra Jaya Subhadra Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Nitai Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Bol Hari Bol Chari Chari Prabhupad 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 प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव
हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय निताई गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी जय श्री श्री राधा की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद एकादश अध्याय श्लोक संख्या 19 पश्य पश्य वयस्यांस्ते त्रिमनिष्ठान स्वलंकृतान त्वं स्वस्नातः कृताहारो विहरस्व स्वलंकृतः पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टान स्वलंकृता वंश स्नात कृता हरो विरह विहरस्व स्वलंकृत कश्यपश्च वयस्यांस्ते मातृमृष्टां स्वलंकृतां वंश स्नात कृताहारो विहरस्व स्वलंकृत। बोले माता जी पश्य पश्य वयस्यांस्ते पश्य पश्य जरा देखो तो वयस्यान समान उम्र के बालक ते तुम्हारी मातृमृष्टान अपनी माताओं द्वारा नहलाए धोलाए गए सुअलंकृतान सुंदर आभूषणों से सज्जित तुम चो तुम भी स्नात नहाकर कृत आहार तथा भोजन करने के बाद विहरस्व उनके साथ खेलो कूदो सुअलंकृत अच्छी तरह सज धज कर। अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद जरा अपनी उम्र वाले अपने सारे साथियों को तो देखो कि वे किस तरह अपनी माताओं द्वारा नहलाए धुलाए तथा सुंदर आभूषणों से सजाए गए हैं। तुम यहाँ आओ स्नान करने भोजन खाने तथा आभूषणों से अलंकृत होने के बाद फिर अपने मित्रों के साथ खेल सकते हो। तात्पर्य सामान्यतया बालकों में स्पर्धा होती है, यदि एक मित्र कुछ कर लेता है तो दूसरा भी कुछ करना चाहता है। इसलिए माता यशोदा ने कृष्ण से कहा कि तुम्हारे साथी सजे धजे है जिससे वे भी अपने को उन्हीं की तरह सजा सके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त रमस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री श्री राधा गिरधारी जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताय एवं श्रीनाथ जी तथा इस संस्था के आचार्य यदि भक्तिवेदांत स्वामी साथ में आए हुए समग्र वैष्णव एवं वैष्णव के श्री चरण कमल में दंडवत प्रणाम करते हुए आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। किसी भी सात्वत ग्रंथ में अगर कोई बात प्रकाशित की है तो यही प्रकाश प्राप्त होता है कि वैष्णवों का संग एवं संग के पश्चात भगवान की हरि की लीला कथा में रम जाना, उसका आस्वादन करना, उसको सुनना, जो भी कहें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कह दिया कि दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार है वह दुख से भरा हुआ है। तो वही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो वही प्रभु ने प्रश्न किया कि सुख कहाँ पर है, श्री राय रामानंद जी को, है ना, सुख और दुख की व्याख्या कीजिए। तो एक ही बात को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में एक ही बात को रखा कि वैष्णवों का संग प्राप्त न होना यही सबसे बड़ा दुख है। और सुख क्या है, तो वैष्णवों की संग प्राप्त हो जाना, वैष्णवों की संगति में बैठने का सुअवसर प्राप्त होना यही सबसे बड़ा सुख है। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि संत मिलन जग को सुख माही। इस संसार में सुख है तो एक ही जगह पर है, कहां पर, संत मिलन जग को सुख। सुख का प्रकाश तब होता है, सुख का अनुभव तब होता है जब संतों का मिलन हो जाता है, संत गण मिलते हैं, संतों का दर्शन होता है, यही सबसे बड़ा सुख माना गया है। श्री ध्रुव महाराज के सामने भगवान साक्षात खड़े हैं। तो ध्रुव महाराज गए थे भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए, राज्य की अभिलाषा से। त्रिभुवन से भी श्रेष्ठ राज्य की कामना हृदय के भीतर थी, तो उस राज्य को प्राप्त करने के लिए वहां पर गए थे, भगवान को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान प्रसन्न हो गए तब ध्रुव महाराज ने राज्य नहीं मांगा, उसको तो पहले ही निग्लेक्ट कर चुके थे, लेकिन मुक्ति भी नहीं मांगा, वैष्णवों का संग मांगा। भक्ति मुहु प्रवहतां परिमे प्रसंगा, आपकी भक्ति में जो नित्य निरंतर रमण करते हैं उन भक्तों के संग की ही अभिलाषा है। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने प्रश्न उठाया कि मुक्ति मांग लेना चाहिए, नहीं क्यों उसका संग मांग रहे हैं? तो मुक्त हो जाए संसार के, संसार के दुखों से मुक्त हो जाए, तो कहते नहीं। उस संतों के संग में बैठने मात्र से मुक्ति तो अनायास मिल जाएगी, उसके लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। कितने बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान सामने खड़े हैं और भगवान सामने खड़े फिर भी मुक्ति नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे? उनके भक्तों का संग मांग रहे। एक ऐसा ही आश्चर्य, भरत महाराज जी गए थे भगवान श्री राम को चित्रकूट में मिलने के लिए जा रहे थे, तब प्रयाग में भारद्वाज मुनि के साथ कुछ संवाद हुआ। उसमें भारद्वाज जी कहते हैं कि सुनो भरत, हम झूठ न कही। हे भरत जी, अब सुन लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सभी साधनों का फल क्या है? सभी साधनों का फल है कि भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण इत्यादि का दर्शन प्राप्त हो जाना है ना। हम लोग साधन क्यों कर रहे हैं? साधन सब इसलिए कर रहे हैं कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो, भगवान का दर्शन हो जाए, इसलिए हम सब साधन कर रहे हैं। लेकिन तेई फल परम, उस फल का भी परम फल यही है कि भरत तुम जैसे संतों का दर्शन हो जाना। कितनी बड़ी बात है, भगवान के दर्शन का फल यह है। भारद्वाज मुनि को मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि तुम राजा हो गए हो तो मुझे यहाँ कोई झोपड़ी बोपड़ी चाहिए, तुम्हारे ऐसी बात नहीं है। तापस वेश, पहले उन्होंने कहा कि मैं उदासीन तापस वेश में रहता हूँ, एक झोपड़ी फल फूल खाकर रहता हूँ, किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ, याचक वृत्ति में रहता हूँ, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन प्रयागराज को साक्षी मानकर ये बात कह रहा हूँ। फल का फल वैसे तो होता नहीं है, फल का फल क्या होता है? फल का फल कुछ नहीं होता है, सभी साधन अनुष्ठा का फल ही है कि भगवान का दर्शन होता है, इसके बाद क्या होता है? लेकिन भारद्वाज मुनि कह रहे हैं नहीं, इसका फल यह है कि भरत तुम जैसे संतों का दर्शन हो गया। मान लीजिए भरत जी ने कहा कि ऐसे आप क्यों कह रहे हो, सब लोग तो भगवान के दर्शन के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास में लगे हुए, सब साधन सब वेद भी कह रहे हैं। तो बहुत सुंदर भाव दिया गया है वहां पर कि भारद्वाज जी ने कहा कि भगवान राम, सीताराम, लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पर आए प्रयाग में, आकर यहाँ पर रुके और चले गए, ठीक है हमको दर्शन प्राप्त हुआ। लेकिन भगवान रामचंद्र जी जब गए दूसरे ही दिन से सब लोग, जितने भी योगिंद्र, मुनिंद्र, ज्ञानिंद्र, जितने जितने भी तत्वद्रष्टा है, वो सब दूसरे दिन उनके उनके साधन में लग गए। भगवान के साथ संग प्राप्त करने के बाद वह लोग उनके साधन में, उन जो जो साधन था उन साधन में लग गए। कोई असर नहीं हुआ, पहले जो थे वैसे ही रहा, ठीक है भगवान आए दर्शन कर लिया संग प्राप्त, लेकिन भरत जब तुम आए तब यह सब प्रयागवासियों को पता चला कि भगवान राम को किस तरह से प्रेम किया जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान को किस तरह से प्रेम किया जाता है वो पूरा प्रयाग तुमसे सीखेगा, वो पूरे प्रयाग को तुम सिखाओगे, यही तुम्हारे दर्शन का फल है कि भरत राम को कैसे प्रेम किया जाए वो तुम्हारे आचरण से प्रयागवासी सीखेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राम के दर्शन का फल यही है कि भरत तू जैसे संत का दर्शन हो जाना। संत कहते हैं, संत दिखाते हैं कि भगवान, भगवान कैसे दिखाएंगे मुझ में कैसे प्रेम, वो तो बात कहते हैं ठीक है, लेकिन आचरण करके तो संत गण ही दिखाते हैं ना कि भगवान को कैसे प्रेम किया जाता है। यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो संतों के संग में बैठकर उन उन प्रेमियों की, श्रीपाद चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भगवान को विशुद्ध भक्त जो है माधुर्य रस के, वात्सल्य रस के, सैक्य रस के, जो जो भी रस के भाव से जो जो भी भक्त गण भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उन भगवान के भक्तों के लिए निसंदेह ये श्रवण कीर्तन योग्य है। क्यों? क्योंकि बिना श्रवण कीर्तन के प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, प्रेम उत्पन्न होता ही नहीं बिना श्रवण कीर्तन से। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवण आदि शुद्ध सिद्ध कर रहे उदय। तो वात्सल्य भक्त जो वात्सल्य रस में है, उन वात्सल्य रस के रसिक भक्तों के लिए निसंदेह माता यशोदा की कृष्ण के प्रति जो चेष्टाएं हैं, माता यशोदा किस तरह से भगवान श्री कृष्ण को सुख देने की प्रयत्न कर रही है, वह चेष्टा उन भक्तों के लिए मननीय है और करणीय है। उससे ही हृदय में भाव बढ़ता है उन उन भक्तों को, लेकिन वो प्राप्त कहां से होगा? साधु संघ से। साधु के बीच में बैठकर जब व्यक्ति सुनता है, इसलिए साधुओं की इतनी बड़ी महिमा है। तो मैं ध्रुव महाराज की बात कर रहा था, तो ध्रुव महाराज जी के सामने भगवान भक्तों का संग मांग लिया, मुक्ति नहीं मांगी है ना, मुक्ति को अनायास प्राप्त हो जाएगी। और आपकी कथा पान मत, और आपकी कथा में, आपकी कथा का अमृत रूपी कथा का जब पान करूंगा तो उनमें मत रहूंगा। मत मत मतलब मत नहीं, वोट नहीं, मत मतलब उन्मत। अभी माहौल छूटने का है तो मत मतलब वहां पर भी कभी कभी मन हो जाता है, मत भी देना चाहिए। ऐसा कुछ भक्त कह रहे हैं, व्हाट्सएप में मैसेज चल रहा है आजकल, महाराज लोगों ने डिसीजन किया है कि बीजेपी को सब लोग वोट दे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये व्हाट्सएप में ऐसा मैसेज, महाराज का आदेश है कि सब लोगों को वोट देना चाहिए फरजियात, और इस बार निर्णय यह किया कि बीजेपी को वोट देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये SMS ऐसा चल रहा है व्हाट्सएप में, कुछ महाराज ने ऐसा डिसीजन लिया। तो वह मत की बात नहीं है, लेकिन आप सब मतदान जरूर कीजिए। वह मत की कृष्ण मत, कृष्ण रूपी अमृत, कृष्ण रूपी कथा, कृष्ण कथा रूपी मत की बात कर रहे हैं। उन्मत हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, उस रस में डूब जाऊंगा। तो महापुरुषों के संग से ये बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होते हैं। हम सबको भी ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के सानिध्य में, उनके प्रतिनिधि जो कर रहे हैं, उनके शिष्यगण, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। उनके द्वारा हम लोग भी कुछ रथास्वादन करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं। परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की देन है कि भागवत को यथार्थ रूप में प्रकट किया, सिद्धर स्वामी चक्रवर्ती पाद की टीका में अगर किसी ने इतनी कथा कही होगी तो परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, ये बहुत बड़ी देन है और इसका उनकी एक उपलब्धि भी है। तो यहां पर प्रसंग चल रहा है, अब दूसरा प्रसंग शुरू हो गया है छह दिन से। आप लोगों ने लास्ट टाइम सुना था, क्या सुना था वो भी याद नहीं। मंदासु मंद मत यो मंद भाग्य यो भद्रता, इसलिए भागवत के प्रारंभ में ही कहा हमारी बुद्धि इतनी तेज नहीं है कि हम याद कर, इसलिए महाप्रभु ने कहा कुछ करने की कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा हरे साधुओं के संग में महामंत्र का गान कीजिए, सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो फल और फूल भगवान ने ले लिया था लास्ट संडे है ना, वो फल और फूल बेचने आई थी तो उसके पास फल और फूल भगवान ने ले लिया और उसके बदले में भगवान ने क्या दिया, रत्न जड़ित मालाएं प्रदान की। रत्न जड़ित मालाएं प्रदान करने के बाद भी उस भिलिनी ने अपने जीवन में भी सच्चा नहीं झूठा मोती भी नहीं देखा था और रत्न जड़ित माला आ गई उसके हाथ में, लेकिन फिर भी उसकी नजर कहां टिकी हुई थी, श्याम सुंदर की छवि में। श्याम सुंदर की छवि में बिल्कुल उनकी आंख लग गई थी। माता यशोदा ने कहा कि हे भिलिनी अब तुम जाओ, अब क्या काम है। तो भिलिनी ने श्याम सुंदर ने दिए हुए मोतियों की माला है वो तोड़ दी, बिखेर दी, मन में यह भाव से बिखेर दी कि जब तक इस मोती को ले लूंगी तब तक तो श्याम सुंदर को देख पाऊंगी ना। उस भाव से ऐसे ऐसे भाव प्रकट होने लगे कि उस भिलिनी को वहां से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, क्योंकि आज भगवान की झांसी उन्होंने प्राप्त कर ली थी। यह कथा सुना इसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी एक नई लीला प्रारंभ की, जो भगवान ने तीन चार दिन के बाद की है, ऐसा आचार्यों का भाव है। सरित तीर गतम कृष्ण 10, 11, 12 श्लोक में है, सरित तीर 12 श्लोक से नहीं है, 11 श्लोक में यह लीला है और 12 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी यह लीला को प्रारंभ कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण सरित तीर गतम यमुना के तीर जाने लगे हैं। अब थोड़े बड़े हो गए है ना, अभी तक क्या है, क्या था कि अभी तक घर पर ही सीमित थे, लेकिन अब चलने लगे हैं। वैसे तो नटखट तो है ही, तो माँ उसको रोक नहीं पाती। श्याम सुंदर चलने लगे हैं, अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो यमुना के तीर पर वो अपने सहगण अपने मित्रों के साथ जाने लगे हैं। लेकिन इसके पहले गर्भ संहिता में भी यह लीला दी गई है, कौन सी लीला, ये भिलिनी की। उसके बीच में गर्भ ऋषि ने एक और लीला रखी है कि उसी समय एक और भी लीला दो तीन दिन में हुई थी। गर्भ ऋषि इसी लीला के अंतर्गत, मैंने सोमवार को भी भागवतम क्लास में कहा था लेकिन इसी लीला के अंतर्गत है इसलिए कह देता हूं, और आप लोग सिद्धांत तो बहुत बहुत सुनते रहते हैं, प्राकृतिक दृष्टांत भी बहुत बहुत सुनते रहते हैं, तो मैं सोचा कि वही लीला कह दू। तो श्याम सुंदर एक दिन माता यशोदा की पीठ पर खेल रहे थे तो खेलते खेलते चले गए यमुना के तट पर। मन के भीतर एक झांकी बननी चाहिए कि यमुना के किनारे भगवान खेल रहे हैं, खेलने के लिए जल दिए और खेल चल रहा था तो भगवान ने अपने कर कमल से अपने बड़े भाई दाऊ जी पर मिट्टी डाली, रेती यमुना की रेती थी वो डाल दी, तो बगल में ही श्रीदाम बैठे थे, तो श्रीदाम की आंख में सब मिट्टी। श्रीदाम को क्रोध आया, श्रीदाम दौड़ा कृष्ण के पीछे और कृष्ण सोचने लगे कि अगर श्रीदाम मुझे पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं, ये बात पक्की है। तो कृष्ण वही रेती में लेट गए, दिगंबर अवस्था में थे, वही रेती पर लेट गए। तो श्रीदाम ने क्या किया, तो श्रीदाम ने मिट्टी रेती से वो कृष्ण पर डालने लगे। इसमें बलराम जी दूर बैठे थे, बलराम जी ने देखा कि ये तो कृष्ण को हरा रहा है, कृष्ण को मार रहा है। बलराम जी के पास गमछा था, गमछा भर कर गए और श्रीदाम पर डाल दिया। इसके बाद कृष्ण खड़े हो गए और कृष्ण खड़े हो गए तो श्रीदाम और बलराम में थोड़ा झगड़ा हो गया। तो कृष्ण के छोड़ना श्रीदाम, दाऊ भैया तुम भी ऐसे ही बात चल रही थी। तो कृष्ण ने कह दिया आज मैं जीत गया। श्रीदाम के तू कैसे जीता, मैं जीता, तू चीटिंग करता है, जीता मैं जीता। आपस में इसी तरह बहस चल रही तब दुर्वासा जी आ गए भगवान श्री कृष्ण की उस झांकी का दर्शन करने के लिए। भगवान ने ही कृपा करने के लिए बुलाया, दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने देखा, क्या देखा, धूलि धूसिर सर्वांग वक्र केशम दिगंबरम, गर्ग संहिता में श्लोक है। सर्वांग धूलि धूसर, सर्व अंग कैसे, उनके आंख में, उनके सर पर, उनके बदन में पूरे की पूरी रेती, यमुना की रेत। वक्र केशम, वैसे तो रोज माता बालक का वक्र मतलब बाल सजा धजा कर रखते हैं, लेकिन वक्र केश बिखरा हुआ है और अवस्था दिगंबर अवस्था में है। धावंतम बालक साध्यम हरि विस्मितम, हरि वैशत विस्मितम। और ये परात्पर ब्रह्म धावंतम बालक है, कभी बालक के पीछे दौड़ता है, कभी बालक उसके पीछे दौड़ता है, क्या ये सब खेल हो रहा है, उनको देखकर विस्मित हो गए, शंका पैदा हो गई। एक भाव दर्शन का लेकर आए थे, तो दर्शन का भाव लेकर आए थे, दर्शन करने के बाद भीतर आनंद उठना चाहिए, आनंद होना चाहिए। हम कोई भी सात्विक क्रिया को अर्थात भजन करते हैं तो भजन करने समय हमको आनंद उत्पन्न होना चाहिए हृदय के भीतर, है ना। लेकिन आनंद उत्पन्न नहीं हुआ, क्यों, विस्मित हो गए, संशय पैदा हो गया। क्या संशय पैदा हो गया, परात्पर ब्रह्म का लक्षण क्या है, वो रोता नहीं है, वो नंगा घूमता नहीं है, वो बालक के पीछे दौड़ता नहीं है, वो रेत में खेलता नहीं है, वो सच्चिदानंदमय है, अपने ही आनंद में परिपूर्ण रहने वाला दूसरों के पास से कैसे आनंद ले सकता है, यह शंका हो गई। तो अपने आप में पूर्ण है, सच्चिदानंदमय विग्रह है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। तो बहुत तत्व की बात है, बहुत सिद्धांतिक बात है। अनुसुईया और अत्रि ऋषि महान तपस्वी के पुत्र होते और खुद तपस्वी, ये तो भगवान को कृपा करनी थी। एक शंका उत्पन्न हो गई, मन में शंका हो गई, स ईश्वर एवं भगवान, क्या यही ईश्वर है, यही भगवान है, कथम बाले भूवि लूटे, ये तो बालकों के साथ जमीन पर लेटते हैं, दौड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, कभी उस बालक पर मिट्टी डालते हैं, कभी बालक उसके पर मिट्टी डालते हैं। अयम तो नंद पुत्र अस्ति न कृष्ण परात्पर, ये तो नंद का ही पुत्र है, ये परात्पर कृष्ण नहीं है। संतगण कहते हैं कि तीन प्रकार की बाधा आती है, मल विक्षेप और आवरण, माया द्वारा आवरण हो गया, गीता में भगवान कहते हैं कि सब लोग मुझे नहीं देख पाए, मैं माया से आवृत रहते, और वही भगवान भागवत दशम स्कंध के 29वें अध्याय में कहते हैं कि माया ही सब कार्य करती है, माया कौन खेल में आएगा, कैसा खेल करना है, कैसा वातावरण रखना है, कैसे पुष्प का चयन करना है, कैसे पुष्प को लाना है, किस किस को दिखाना है, किस किस को नहीं दिखाना है, श्याम सुंदर का वस्त्र कैसा होना चाहिए, उसके साथ अगल बगल में कौन खड़ा रहना चाहिए, वो सब योग माया करते हैं। बाबा विस्मित हो गए, आवरण हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिद्ध लोग भी भगवान के दर्शन पा सके, नहीं। यद्यपि भगवान ने गीता में कहा कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, वो शोक नहीं करता, उसका तत्व ज्ञान है, वो तिरोहित नहीं होता, वो संसार को भगवत में देखते हैं तो देखते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं आती। लेकिन इसके बाद कहते हैं, क्या कहते हैं, भक्तिया मामो भी जाने दी, भक्ति के द्वारा ही मुझको जान सका तत्व से। अगर भक्ति नहीं है और सब सब गुण है तो भगवान का दर्शन कर लेंगे, भगवान के प्रेम का आस्वादन कर ही पाएंगे, नहीं जरूरी नहीं। भगवान ने विष्णु पुराण में शायद कहा है अर्जुन को संबोधन करते हुए कि मत महात्मयम मत सपर्याम मत सद्धाम मत मनोगताम जानंती गोपिका पार्थ नान्य जानंती। मुझमें जितनी श्रद्धा है मेरी पूजा कैसे करनी चाहिए, और मत मनोगतम मेरे भीतर क्या भाव है, भगवान को तत्व से जानना मतलब क्या हुआ। ये भगवान खुद कह रहे हैं कि तत्व से जानना मतलब गोपिका ही जानती है, न अन्य नन्य, मतलब पश्चित पश्चित कोई कोई जानता है, गोपिकाओं के अलावा कोई कोई जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए महाप्रभु ने कहा गोपीर भरतुर पद कमल जोर दास दासा निदास, वो जिस तरह से सेवा पूजा करते हैं उनके सर होकर हम दास 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 दासानु दास भावकर सेवा करेंगे तब प्राप्त होंगे, क्योंकि जो जानता है वह व्यक्ति के द्वारा ही कुछ समझा जा सकता है। तो गोपिकाओं के प्रति भगवान का यह वाक्य है, अर्जुन को संबोधन करके कह रहे थे मन मनोगता मेरे मन के भीतर जो भाव है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या इच्छा रहती है, वह गोपिका जानती न अन्य जानती तत्व, तत्व से कोई नहीं जानता। और एक तत्वता शब्द का प्रयोग भगवान ने भगवत गीता में कहा है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम। इसके बाद क्या है, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् वेति तत्वतः, कश्चित् वेति तत्वतः। अब इस श्लोक में जरा देखिए, श्लोक तो हमने बहुत बार सुना है, याद भी है, लेकिन भगवान ने शब्द क्या रखा, यतताम अपि सिद्धानाम। पहले क्या कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, उस लाइन को छोड़ दीजिए, कोई कोई सिद्धि के लिए, सिद्धि के लिए मतलब आत्मज्ञान के लिए प्रयास करता है, तो अभी कह रहे यतताम अपि सिद्धानाम, यतताम अपि सिद्धानाम, तो सिद्धानाम सिद्धों में, तो सिद्ध अवस्था ही अपने आप में पूर्ण है ना। सिद्ध हम लोग भी कहीं वृंदावन बरसाना अयोध्या इत्यादि जाते हैं तो कहते कोई बहुत बड़े तपस्वी बाबा हो, ये तो सिद्ध बाबा है, हाँ उनके दर्शन के लिए जाना पड़े। बरसाना में प्राय हम लोग जाते हैं तो कहते कि बहुत सिद्ध बाबा है, हाँ उनके दर्शन के लिए, तो सिद्ध ही अपने आप में पूर्ण है। तो यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसे कहीं कहीं सिद्ध लोगों में भी यत्न करने वाले, यतताम अपि ऐसे बहुत बहुत यत्न करने वाले सिद्धों में भी कश्चित माम वेति तत्व था। कोई कोई मुझे तत्व से जानता है। अब दृष्टांत के द्वारा समझिए कि सनत कुमार सिद्ध थे, लेकिन उसको भगवान में प्रेम कब प्राप्त हुआ? तुलसी गंध से, है ना। जनक महाराज सिद्ध अवस्था सिद्ध थे, लेकिन जब भगवान को देखा जनकपुर में विश्वामित्र के, तब उसके भीतर रोमांच कंपास को होने लगा, तब उसमें प्रेम उसके हो गया। तत्वदर्शियों की सिद्धि भी वही है कि कोई प्रेमी वैष्णव के द्वारा या मद भक्ति लभते पराम, भगवान ने जो गीता के 18वें अध्याय में उसकी आकांक्षा कोई रखता है, खास करके भगवत प्रेमी संतों के संग में बैठता है, तो निसंदेह उनमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि संसार से ज्ञान और वैराग्य तो उसको पहले ही प्राप्त हो गया है। सार तो यही हुआ कि भगवत प्रेमी संतों के संग से ही प्रेम उदय होता है, अन्यथा न अन्य, अन्यथा नन्य तत्व तो कोई तत्व से नहीं जान पाता। तो दुर्वासा जी फंस गए हैं, अब क्या करें? तो श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की बहस चलती थी। उनमें श्री राम ने कहा कि हे कृष्ण, निर्णय ले लेते हैं। वो बाबा बैठा ना, उस बाबा को जाकर पूछते हैं कि कौन जीता और कौन हारा। वो बाबा कब से देख रहा है? तो बाबा का मन तो संदेह रूपी हिंडोलों में झूल रहा था। जैसे जैसे बाबा के पास जाते थे कृष्ण, वैसे वैसे रोमांच कंपास बढ़ता जा रहा था, और उनका सारा का सारा तेज मानो कृष्ण में समाता जा रहा था। तपस्वी थे, तेज था उनमें। सिद्धाम ने कहा कि हे साधु बाबा, कुछ जवाब नहीं मिला। दो तीन बार कहा साधु बाबा, हे साधु बाबा, सुनो ना। लेकिन साधु बाबा कैसे सुने, वो तो दूसरे राज्य में चले गए थे, यहाँ पर तो थे ही नहीं। मन ही मन में सोच रहा है कि परात्पर ब्रह्म में मुझे शंका तो नहीं हो गई है ना, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी ना। तब कृष्ण ने कहा हे बाबा, लगता है बाबा गूंगा है, कुछ बोलता नहीं, पागल है। कृष्ण बोलने लगे, उनको क्या डर के दुर्वासा क्या कहेंगे क्या नहीं। दुर्वासा जी को पागल कहना मतलब ये संसार में किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन जब भगवान से कृष्ण बोले तो लड़खड़ाने लगे। अब उसको ऐसे लगा कि मैं गिर जाऊंगा, तो उसी समय वो बैठ गए वो कदम के नीचे। और जब दुर्वासा जी बैठे तो भगवान कृष्ण अपना कर कमल उठाकर उनके पास बैठ गए और स्पर्श कर दिया। दादी हिलाकर कहा कि साधु बाबा कौन जीता बोलना, फिर भी नहीं बोला। कृष्ण खड़खड़ाहट हंसने लगे। जब कृष्ण हंसे उसी समय दुर्वासा जी उनके भीतर मुख के भीतर चल दी। अब भगवान को ऐश्वर्य बताना है कि ये परात्पर ब्रह्म है कि नहीं है। अंदर गए तो हजारों हजारों साल हो गई, वर्षों बीत गए, लेकिन पार नहीं पा रहे, नहीं थी नहीं पार पा सके। बहुत बहुत देखा गर्भ संहिता में, बहुत बहुत वर्णन है, बहुत बहुत देखा उन्होंने। इसके बाद समाधि में लग गए और एक अंत सिद्र देखा। उस सिद्र में प्रवेश किया तो गोलोक वृंदावन में चले गए, और गोलोक वृंदावन में उन्होंने देखा गोवर्धन महाराज, जय गोवर्धन महाराज को देखा। साथ में क्या देखा, सब देखा, गवे देखी, हजारों करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि गोपांगनाएं देखी, जय ध्वनि हो रही थी, सुदाम इत्यादि खेल रहे थे, वही कालिंदी, वही पुष्प, वही सब वही के वही देखने लगे। और देखते 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 जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो फिर वही हंसी देखी उन्होंने, फिर वही हंसी थी। वो बाहर आ गए, आकर देखा तो भी दो ही क्षण हुआ था, जान गए। दंडवत करने लगे तीन साल के बालक को, लेट गए और वही जो मिट्टी थी कृष्ण जहां पर खेल रहे थे वह मिट्टी को अपने सर पर डालने लगे। ओहो आज धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य। आंख से अश्रुधारा बहने लगी और भगवान की तीन श्लोकों में स्तुति की है। और भगवान की जो झांकी है ना, उन झांकी का वर्णन करके श्री दुर्वासा जी ने कहा है कि श्री नंद नंदन मन सा स्मराने, उसी श्री नंद नंदन को मैं मन से स्मरण कर रहा हूँ। धूली दूसरी तो अंग जिसका है दिगंबर अवस्था में उनकी झांकी को निमन। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनको इशारा किया और कृष्ण कृष्ण करते हुए वो बद्रिका आश्रम में चले गए। अब तपस्या करने के लिए नहीं गए, भगवान के वही स्वरूप का ध्यान करने के लिए, उनका मनन करने के लिए दुर्वासा जी बद्रिका आश्रम में गए। उसके बाद जब लीला योग माया, तब यशोदा माई कृष्ण को लेकर वही, लेकिन वही दूसरे दिन सूरदास जी एक दूसरी लीला का वर्णन कर रहे हैं, उलाहना लीला जिसको कहा गया है। एक दिन की बात है, यही लीला के प्रसंग बचे इसलिए मैं सब लीला को कह रहा हूं। सूरदास जी कहते कि एक दिन की बात है कि भगवान श्याम सुंदर रोते रोते आए माता यशोदा के पास। सूरदास जी ने भाव या तो अन्य आचार्यों ने भाव प्रकट किया है कि जब कृष्ण जब जीतते थे तब बहुत खेलते रहते थे और जब हारते थे ना तब जल्दी आ जाते थे। हारना तो उसके लिए तो सुखी था, लेकिन ये सब लीला है। एक दिन रड़ते हुए आए माता के पास, बहुत रड़ते थे, शांत नहीं होते। माता कहती है कि क्या हुआ लाला, एक बार बता। माता के आंख से भी अश्रु धारा बहने लगी। माता ने कैसे भी करके शांत किया, लाला माखन मिश्री खिला दो, लाला ये खिला दो, लाला वो कर दो, लेकिन लाला शांत नहीं हो रहा। कैसे भी करके शांत हो गया। माता पूछे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या तू रोज मुझे डांटती है लेकिन दाऊजी को कभी नहीं डांटती। तो माता कहा कि मैं क्यों दाऊजी को, दाऊजी भी इतना ही शरारत करता, तो मुझे क्यों डांटती है, दाऊजी को क्यों नहीं डांटती। लेकिन माता के बता तो सही बेटा क्या किया दाऊजी ने। तो भगवान श्री कृष्ण सूरदास जी उनके भाव में कहते कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, हे मैया मुझे दाव खिजा रहे है। मैया बोले क्या कह रहे है बेटा, मोसो कहो तो मोल को लेनो, तू ससुमति को बचायो। क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है कि तू तो मोल का दूसरे स्टेट से लाया हुआ है, दूसरे दाव से लाया हुआ, दूसरे का है, तू ससुमति को बचायो। माता यशोदा ने, माता ससुमति ने तुझे कब जन्म दिया ये तो बता जरा। तो माँ यशोदा कहते तू मान लेता, भगवान कहते कैसे न मान मैया, वो तर्क के साथ बात करता है। वो कहता है कि कहा कहो ये रिस के प्यारे खेलन को नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता को है तेरो तात, मोरे नंद यशोदा गोरी तू कत तो श्यामल गात। वो तर्क देता है, क्या तर्क देता है कि नंद बाबा गोरा है, माता यशोदा गोरी है, तो तू कैसे कारा हो गया वो बता दो जरा। अगर तू कहता है कि नंद और यशोदा का ही मैं पुत्र हूं तो तू जरा ये बता दे कि नंद और यशोदा तो गोरे है, तू कारा है, तो तू कैसे कारो हो गयो और वो गोरे है। तो चुटकी दे दे बाल न चावत हंसत सबे मुस्कात। और जब दाव भैया कहते हैं ना तो क्या करते हैं, चुटकी बजाकर सब लोग ताली बजाकर मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। इसके बाद सूरदास जी वर्णन करते भगवान श्याम सुंदर की इन लीलाओं को देखकर माता रीझ जाती है और श्याम सुंदर को भरोसा दिलाने के लिए कहते हैं कि सूर श्याम मोहि गोधन कीसो हो माता तू पुत्र। गौ माता की सौगंध खाकर कहते हो बेटा कि तू ही मेरा पुत्र है, अन्य कोई नहीं। जब गौ माता की सौगंध खाई माता यशोदा ने, तब श्याम सुंदर ने मान लिया कि अब तो पक्का हो गया, वरना मां गौ माता की सौगंध नहीं खाई। वहां पर भी गाय के प्रति प्रेम प्रकाशित हो रहा है भगवान। गौ का नाम लेकर अगर कह दिया तो बस कह दिया तो हो गया है, तो अब चाहे पूरा संसार भी कह दे कि वसुदेव का पुत्र है तो भी नहीं मानूंगा, मैं यशोदा का ही पुत्र रहूंगा। गौ पर कितना प्रेम। तो वैसे ही लीला भगवान श्याम सुंदर मान ली। और इसके बाद वाले दिन एक और लीला हुई। अब यह बात तो पक्की हो गई, कृष्ण ने अपने मन में स्थिर कर लिया कि अब माँ ने गौ माता की सौगंध खाकर कह दिया है कि मैं तेरा ही पुत्र हो, और बलराम कुछ भी कहे इससे क्या फर्क पड़ता है। तो बलराम को भी मालूम हो गया कि अब तो ये गौ माता की सौगंध खाए और ये सब वो है, तो अब कुछ नया प्लान करना पड़ेगा। तो दाऊ जी एक दिन बोले कि चलो चलो खेलने के लिए जाते यमुना के तीर पर। सब लोगों को साथ में लेकर सब लोगों के साथ दाऊ जी ने बात कर लिया कि देखो कृष्ण आए ना तब हम लोग एक खेल खेलेंगे। क्या खेल खेलेंगे? तो उनको कहेंगे देखो देखो जुजवाए जुजवाए, और हम सब पैर पर चढ़ जाएंगे और कृष्ण को वैसे ही रोते रहेंगे, वैसे ही क्रोध करते रहेंगे, हम सबको अच्छा लगेगा। तो ले गए। इसके बाद क्या हुआ? जैसे दाऊ जी ने कहा था वैसे ही सब सखा ने कहा कि देखो देखो भाई जुजवा गया जुजवा गया, सब लोग चलो पैर पर चढ़ जाओ पैर। उनके सब बड़े थे तो सब लोग पैर पर चढ़ गए। कृष्ण ऐसे ही अकेले बेचारे लड़ते हुए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इतना ही नहीं, कहीं मोर बोलता है, कहीं अन्य पशु पक्षी बोलते हैं, तो उस बात को सुना सुना कर दाऊ जी कह रहे कि देखो देखो आ ही गया, तो पक्का आ गया, बस नजदीक है। और उस बात को सुनकर कृष्ण जोर जोर से रोते थे। अब देखो कौन नहीं विस्मित हो जाएगा, पूरे संसार जिनके नामाभास मात्र से तो पूरे संसार के काल भी कांपते रहते, वो भगवान मोर की आवाज को सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। सही में डर पैदा हो गया। माँ रोहिणी के पास भी आके दाऊ जी ऐसा कह रहा है, दाऊ जी ऐसा कर रहा है मेरे साथ। तो माँ रोहिणी ने कहा वो तो तुझे ऐसे ही खींचाने के लिए, नहीं मैया। तो रोहिणी ने कहा कि ठीक है मैं डांटूंगी, आज तुम दाऊ जी को आने दो मैं डांटूंगी, लेकिन क्या तू डर जाता है दाऊ जी तुझे ऐसा कहता है? हाँ मैया मुझे बहुत डर लगता है। तो माता रोहिणी ने भी अपने साथी पर हाथ रखा, कृष्ण के साथी पर धक 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 हो रहा। मैया ने सोचा सही में डर जाता है। कोई भी शुभ कार्य हो या अशुभ कार्य हो, गोकुल नंदगांव वृंदावन जो भी कहिए, अभी तो गोकुल में ही कल जाएंगे परसों जाएंगे, एक ही कार्य होता था क्या? ब्राह्मणों को बुलाऊं, गाय दक्षिणा दो। उस भय को उतारने के लिए रोहिणी जी ने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया, प्रतिवाचन कराया और कृष्ण के हाथ से भय के मुक्ति के लिए कुछ गौओं का दान करा दिया। किसी के भीतर अभी कुछ भी भय है तो यही शिक्षा, लेकिन अभी गाय भी 25,000 की हो गई है। इसके बाद की यह लीला है। यहाँ पर से चक्रवर्ती पाद यह भाव प्रस्तुत किए हैं कि कृष्ण और बलराम माता यशोदा से ही डरते हैं, इसलिए यशोदा से भी रोहिणी से भी बढ़कर यशोदा का वात्सल्य है। उस बात को प्रकाशित करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी यह लीला कह रहे हैं। बारह बज गया, मध्याह्न का समय हो गया, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण आए नहीं है घर पर। क्यों नहीं आए? क्योंकि आज वो जीत रहे थे, हर रोज वो हारते थे लेकिन आज वो जीत रहे थे इसलिए नहीं आए। श्री यशोदा जी ने रोहिणी जी को कहा कि हे रोहिणी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, तू जा दाऊ जी और लाला को बुलाकर लेकर आ। यशोदा जी कैसे भेजी, क्यों यशोदा जी क्यों रोहिणी को क्यों भेजा? वहां पर कहा गया है कि कुछ ब्राह्मण जन्म नक्षत्र था, भगवान जिस समय जन्म हुआ था उस टाइम कौन सा नक्षत्र था? रोहिणी नक्षत्र था। तो आज के दिन भी रोहिणी नक्षत्र था, तो उस नक्षत्र में कृष्ण के सुख के लिए कुछ ब्राह्मणों को बुलाया था, कुछ वैष्णवों को बुलाया था भोजन के लिए। तो उस भोजन में माता व्यस्त थी, उद्देश्य ब्राह्मणों को खिलाने से ज्यादा कहीं गुणा उद्देश्य ये था कि इस कार्य से कृष्ण को सुख मिलेगा, कृष्ण के सुख में वर्धन होगा, कृष्ण सुखी हो जाएंगे। इसीलिए माता यशोदा जी ने रोहिणी को कहा कि तुम जाओ बुला कराओ। माँ रोहिणी दूर से ही बुलाने लगी कि हे कृष्ण अब तुम आओ। वहां पर आचार्य ने लिखा कि दूर से क्यों बुला रही, नजदीक जाना चाहिए ना। तो उत्तर में कहा गया है कि नजदीक जाने में भय यह था कि कहीं कृष्ण और बलराम भाग न जाए खेलते खेलते, इसी भय के कारण वह दूर से चिल्लाने लगी लेकिन नहीं आए कृष्ण और दाऊ जी। और आकर कंप्लेन किया यशोदा जी से, दीदी तुम ही जाओ, मुझसे वो मेरी बात नहीं मानते और मुझसे नहीं आएंगे। माता यशोदा गई और माता यशोदा कहने लगी कि हे कृष्ण हे बलराम हे दाऊ जी अब तुम आ जाओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी वेट कर रहे, राह देख रहे हैं। मध्याह्न का समय हो गया, हम लोग बुलाने जाते हैं तो कैसे बुलाने जाते हैं? उसे नहीं तारा भाई सीधी वही तीसरे नेत्र। लेकिन यशोदा जी ने बहुत सुंदर कहा, क्या कहा? भोजन के लिए तुम्हारे पिताजी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे, इसलिए मुझे और तुम्हारे पिताजी का आनंद वर्धन करने के लिए तुम आ जाओ। यही श्लोक का अनुवाद है एज इट इज। तो माँ अलग अलग भावों से बुलाने लगी, तो उन्हें यह एक भाव से सुखदेव गोस्वामी ने प्रस्तुत किया है, पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृ निष्ठान स्वलंकृतान। मातृ निष्ठान अपने अपने माताओं के द्वारा स्वलंकृतान अलंकृत हो गए हैं। कौन? वयस्यांस्ते, तुम्हारे जो सहचर है तुम्हारे जो मित्र है उनमें कुछ मित्र ऐसे थे जो अभी अभी तैयार सज धज कर आए थे, अपनी अपनी माताओं के द्वारा अलंकृत हो। श्रीपाद चक्रवर्ती पाठ कहते हैं कि भगवान कृष्ण में मात्सर्य का भाव प्रकट करने के लिए माता यह बात कर रही है, अथवा तो प्रेम जनित क्रोध को प्रकाश करने के लिए माँ कह रही है कि मातृ निष्ठान स्वलंकृतान, अपनी अपनी माताओं से स्वच्छ होकर स्वलंकृतान उनके द्वारा अलंकृत प्राप्त करके वयस्यां स्ते पश्य पश्य तुम्हारे सहगण भी आ गए, देखो देखो। और इसके बाद कहते त्वं स्नात कृताहारो विहरस्व स्वलंकृत, तुम भी स्नान कर लो, तुम आओ, तुमने स्नान किया है दिगंबर अवस्थाओं में, सुबह में भोजन करके गए थे, दूधपान करके गए, माखन खा करके, अब तुम भूखे हो गए हो, कृत आहार आहार कर लीजिए, कुछ खा लीजिए। विहरस्व स्वलंकृत, तुम्हें स्नान करा कर मैं सुंदर स्वलंकृत अलंकार पहनाऊंगी। भगवान भी बड़े सज धज के रहते थे, माता यशोदा उनको बहुत अलंकृत करते थे। और इसके बाद विहरस्व, इसके बाद जो जितना था उतना विहरस्व विहार करो खेलो। तो अलग अलग भाव से माता यशोदा उसको बुला रही थी, लेकिन श्याम सुंदर अपने खेल में मस्त थे। तो आज उनको खेल में ही मस्त रहने दीजिए, क कल कोई भक्त अगर उसको छुड़ाएंगे और माता उसको खिलाएगी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? धन्यवाद।
हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ नागर प्रभु का।
इंद्र ब्रह्मा और दुर्वासाओं को भी मुंह में डालने वाली भारत शरीफ का दर्शन